नई सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसे सत्ता पक्ष ने खूब सराहा है, वहीं विपक्ष ने इस पर निराशा जताई है। बजट पेश करने के बाद मीडिया के सामने आई निर्मला सीतारमण ने टैक्स का दायरा बढ़ाने को लेकर कहा,
The attempt to widen the tax net is something which we've been repeatedly saying that India's tax net will have to be widened, whether it is in the direct taxation or indirect. Second, there are also now the PSU dividends which are improving because their valuations have gone up really high and their performance is also now substantially increased. So revenue mobilization is not just tax based, you have non-tax revenue mobilizations which are also coming up.
इस बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बढ़ा दिया गया है। इसका शेयर बाजार पर नकारात्मक असर भी पड़ा। निर्मला सीतारमण ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा,
The average taxation actually has come down when we say it is 12.5%. Because we worked out for each of the different asset classes, each varied with the indexation.
सरकार में शामिल एनडीए के घटक दलों ने बजट पर खुशी जताई है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद इसको लेकर कहते हैं,
तो आज जो चिंता की गई है उसके लिए बहुत अभिनंदन आंध्र प्रदेश की भी की गई है, देश के लिए भी की गई है और पूरे पूर्वोत्तर भारत के जितने बाढ़ से प्रभावित होते हैं, नेपाल से नदियां आती हैं, वहां कुछ होता नहीं है, तो सबकी सोच सार्थक, सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही विकसित भारत की ओर ले जाने वाला।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला बताया।
यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए समर्पित उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं।
कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उसके चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कुछ वायदों को वित्त मंत्री ने शामिल किया है, लेकिन ठीक तरीके से कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत तंज कसते हुए कहती हैं,
हमारी आशा और विश्वास है कि आने वाले दिनों में वो हमारे घोषणा पत्र की और भी अच्छी चीजों को उठाएंगी और इस देश को उसका लाभ पहुंचेगा। सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या इस देश के सामने है और आशा थी कि इस बजट में ऐसा कुछ होगा जिससे कि रोजगार का सृजन होगा, बेरोजगारी की समस्या का अंत होगा। आज छोटी छोटी नौकरियों के लिए लाखों लोग आवेदन देते हैं। रिस्पांस में जो हुआ है वो बहुत कम है। रिस्पांस में जो कॉपी पेस्ट किया गया है वो भी ठीक से नहीं किया गया है।
महंगाई को लेकर सरकार को घेरते हुए सुप्रिया सुनेत ने कहा,
ये देश कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहा है। आज होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन करीब 3.4% है। फूड इन्फ्लेशन की जो लास्ट रीडिंग थी वो 9.5% है।
बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश का विशेष ध्यान रखा गया है। इसको लेकर विपक्ष शासित राज्यों ने सरकार को घेरा है। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी मरलेना ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया।
दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को 2,32,000 करोड़ रुपया देते हैं और केंद्र सरकार उसमें दिल्ली को क्या देती है? 0, नील बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं देती है।
तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने बजट की आलोचना की है। बजट में भेदभाव का विरोध करने के लिए तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक शनिवार को होगी। इस बीच कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के सांसद बजट के विरोध में संसद परिसर में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब चर्चा विवादों में रही मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट की। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा नीट परीक्षा कराने की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि परीक्षा के पेपर का प्रणालीगत लीक का सबूत नहीं मिला है। अदालत के फैसले का केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वागत किया है। इस फैसले के बाद उत्साहित धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा में धांधली को लेकर सरकार को घेरने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरा।
विरोधी दल की भूमिका आज की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद भी स्पष्ट हुई, विशेष करके देश की नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष काल तक जो रवैया अपनाए थे, देश की एग्जामिनेशन सिस्टम को अमान्य करना, उसको सेम कहना, उसको रबीश कहना, यह उनकी बौद्धिक स्तर का प्रमाण करती है। आज देश की इसी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में
परीक्षाओं को आयोजित करने वाली संस्था एनटीए को दुरुस्त करने का भरोसा देते हुए धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं,
देश की युवा पीढ़ी को, विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, एनटीए को एक जीरो टेंपर फ्री, जीरो एरर फ्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हम लोग कमिटेड है। मैं और एक विषय कहना चाहूँगा, ये सारे प्रोसेस में जो अव्यवस्था हुई उसमें से जो लोग इन्वॉल्व है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
इधर बढ़ते पेपर लीक को देखते हुए बिहार सरकार इसको रोकने के लिए कदम उठाने जा रही है। विधानसभा में आज इससे संबंधित एक विधेयक पेश किया जाएगा। इसमें 10 साल की सजा और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।